पृष्ठ संख्या 483 अध्याय 17 ताम्र निधिया तथा गैरिक मृद्भांड। भारत विशेषकर उत्तरी भारत के पुरातत्व में ताम्र निधियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तांबे के बने हुए विशिष्ट प्रकार के कतिपय उपकरण सर्वप्रथम सन 1822 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित बिठूर नामक स्थान से मिले थे। तब से लेकर आज तक इस प्रकार के उपकरण कहीं न कहीं से आकस्मिक रूप से प्रायः मिलते रहते हैं। इस प्रकार के उपकरण समूहों में मिलते रहे हैं, अतः इन्हें ताम्र निधि की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ये ताम्र निधियां खेत जोतते समय किसी किसान को या नहर की खुदाई करते समय अथवा सड़क बनाने के लिए मिट्टी खोदते समय किसी व्यक्ति को प्रायः मिलती रही है। ताम्र निधियों के वास्तविक पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य के विषय में स्पष्ट एवं निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। सर्वप्रथम विंसेंट स्मिथ ने सन 1905 और 1907 में ताम्र निधियों की परंपरा पर ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से विचार किया और उस समय तक देश के विभिन्न भागों से जो ताम्र उपकरण उपलब्ध थे उनकी संक्षिप्त सूची प्रस्तुत की। लखनऊ संग्रहालय के संग्रहाध्यक्ष हीरानंद शास्त्री ने सन 1916 में एक संक्षिप्त निबंध लिखकर इस विषय की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने का श्रेय हाइन गेल्डन नामक विद्वान को है। उन्होंने सन 1936 में इनका संबंध आर्यों से जोड़ा। सन 1944 में स्टुअर्ट पिगट ने हाइन गेल्डन के मत का समर्थन किया, किंतु कुछ वर्षों के बाद ही उन्होंने अपना मत बदल दिया। सन 1950 में प्रकाशित प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक में पिगट ने ताम्र निधियों का संबंध सैंधव सभ्यता के उन विस्थापित लोगों से जोड़ा जो सिंधु घाटी के अपने मूल स्थान से भगा दिए गए थे एवं जो शरणार्थियों के रूप में ऊपरी गंगा घाटी में रहने लगे थे। इसके पश्चात सन 1951 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन निदेशक बीबी लाल ने गांगेय क्षेत्र से प्राप्त 37 ताम्र निधियों का विवेचन अपने एक विद्वत्तापूर्ण शोध निबंध में करके तज्जनित पुरातात्विक समस्याओं की समीक्षा किया। विगत दशकों में अन्य अनेक ताम्र निधियां प्रकाश से आई हैं। ताम्र निधियों की संख्या अब 86 से ऊपर पहुंच गई है। हरियाणा से 5, राजस्थान से 7, उत्तर प्रदेश से 33, पृष्ठ संख्या 484, बिहार से 19, पश्चिम बंगाल से 6, उड़ीसा से 7, मध्य प्रदेश से 8 और कर्नाटक से 1 ताम्र निधि मिल चुकी है। प्रसार। ताम्र निधियां उत्तर भारत में गंगा यमुना के दोआब के अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं, जैसे राजपुर, परशु, बिजनौर, फतेहगढ़, बिठूर, कानपुर, परिहर, उन्नाव, बिसौली, बदायूं, सरथौली, शाहजहांपुर, मानपुर, बुलंदशहर, बहदराबाद, सहारनपुर एवं सैफई, इटावा आदि। इनमें से अधिकांश स्थान 78 डिग्री से 84 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। मत्स्य भाले, श्रृंगिका, तलवारें एवं मानवा कृतियां ये तीनों अति विशिष्ट ताम्र आयुत प्रकार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ही मिले हैं। रेखा चित्र 1, ताम्र निधियां प्रसारक क्षेत्र। पृष्ठ संख्या 485। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों से ये उपर्युक्त विशिष्ट प्रकार प्राय नहीं मिले हैं। अन्य प्रकार दोआब के बाहर स्थित जिन क्षेत्रों से मिले हैं उनमें बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हामी, बरगुंडा एवं कौशल्या, पश्चिमी बंगाल में तमाजुरी तथा उड़ीसा में दुनेरिया, भागरा, पीर इत्यादि पुरास्थलों का उल्लेख किया जा सकता है। मध्य भारत एवं दक्कन के प्राय द्वीपीय भाग के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के पोंडी, गुंगेरिया, यहाँ कुल 424 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित दायमाबाद एवं कर्नाटक के रायचूर जिले में कल्लूर आदि पुरास्थलों से भी ताम्र निधियां प्राप्त हो चुकी हैं। इन क्षेत्रों से मुख्यतः चिपटी और स्कंदित कुल्हाड़ियां, छेनिया या सब्बर, दुधारी कुल्हाड़ियां आदि ही मिली हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले का कल्लूर ही दोआब के बाहर स्थित एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहां से अन्य उपकरणों के अतिरिक्त श्रृंगिका तलवार भी मिली है। प्रमुख उपकरण प्रकार। ताम्र निधियों के उपकरणों को उनकी बनावट एवं आकार, प्रकार, टाइपोलॉजी आदि के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। रेखाचित्र 2, ताम्र निधिया प्रमुख उपकरण, सौजन्य बीबी लाल, 1951, पृष्ठ संख्या 486। चिपटी कुल्हाड़ियाँ। चिपटी कुल्हाड़ियाँ फ्लैट सिल्ट्स लगभग आयताकार होती हैं। इनका धार वाला सिरा अपेक्षाकृत चौड़े आकार का होता है। धर्मपाल अग्रवाल ने पटना संग्रहालय के इस प्रकार के उपकरणों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इनका निर्माण खुले सांचे से किया गया है। यही कारण है कि ये एक ओर चिपटी तथा दूसरी ओर उन्नतोदर है। परंतु गुंगेरिया प्रकार की चिपटी कुल्हाड़ियाँ दोहरे सांचे से ढालकर बनाई गई प्रतीत होती हैं। चिपटी कुल्हाड़ियों का उपयोग संभवतः लकड़ी काटने तथा जंगली जानवरों के शिकार के लिए होता था। स्कंदित कुल्हाड़ियाँ। स्कंदित कुल्हाड़ियों शोल्डर सिल्ट्स के कार्यांग वाले सिरे की चौड़ाई दूसरे सिरे की चौड़ाई से अधिक होती है। इस वर्ग के किन्हीं किन्हीं उपकरणों में यह अंतर नाम मात्र का है तथा कुछ अन्य में अपेक्षाकृत अधिक है। समतांत बट इंड की ओर इनकी मोटाई अधिक है। धार को देखने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका प्रयोग लकड़ी काटने आदि के लिए किया जाता रहा होगा। सब्बर या खंती वार सेल्स उपकरण लगभग 12 से 15 सेमी से लेकर 30 से 45 सेमी तक लंबे, लगभग 5 सेमी से 15 सेमी तक चौड़े तथा 1-2 सेमी मोटे हैं। ये सपाट और चिकने हैं। ये लगभग समानांतर पार्श्व वाले हैं जिनकी धार ऊपरी किनारों को छाटकर बनाई गई प्रतीत होती है। राजपुर परशु नामक स्थल के अलावा इस प्रकार के उपकरण केवल पठारिक क्षेत्र से ही मिले हैं। गुंगेरिया से प्राप्त इस प्रकार के उपकरण की धार पर आरी की तरह के दांत बने हुए हैं। प्रस्तर तथा ताम्र उपकरणों से समानता के कारण बीबी लाल का मत है कि ये उपकरण प्रस्तर प्रतिरूपों की नकल है। परंतु विचारणीय बात यह है कि सीता भंजी, बान असुरिया, संथाल परगना, जसपुर और ठकुरानी आदि पुरास्थलों से प्रस्तर उपकरण तो मिले हैं, लेकिन ताम्र निधियों से संबद्ध उपकरण नहीं मिले हैं। धर्मपाल अग्रवाल के अनुसार लंबे आकार वाले उपकरण सब्बर की तरह खनिज तांबे की खुदाई के लिए प्रयुक्त होते रहे होंगे। लंबाई में छोटे तथा चौड़े उपकरणों के छेनी की भांति प्रयोग की संभावना है। दुधारी कुल्हाड़ियाँ। दुधारी कुल्हाड़ियों डबल एज्ड एक्सेस में दोनों सिरों पर अर्धचंद्राकार धार मिलती है। इनके बीच का हिस्सा काफी सकरा होता है। ये अंडाकार तांबे की चद्दर से गोलाकार टुकड़े काटकर बनाई गई थी। इस प्रकार की केवल 3 कुल्हाड़ियाँ उड़ीसा के भागरा पीर से मिली हैं। परशु खुरपी के आकार के सपाट तथा चिकने उपकरण हैं, जिनकी धार अर्धवृत्ताकार होती है। धार के कोने स्पष्ट रूप से मुड़े हुए होते हैं। किसी किसी परशु के फाल धार वाले सिरे के दोनों कोने काफी लंबे और मुड़े हुए होते हैं। पृष्ठ संख्या 487। कड़े अथवा छल्ले। इस प्रकार के कड़ों अथवा छल्लों को तांबे की छड़ों के दोनों सिरों को मोड़कर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित पोंडी से इस प्रकार के 47 कड़े प्राप्त हुए हैं। धर्मपाल अग्रवाल ने ऐसी संभावना व्यक्त की है कि इनका उपयोग धातु को तौलने के लिए बाट के रूप में होता रहा होगा। रेखाचित्र 3, ताम्र निधियाँ गंगा के द्वार के विशिष्ट ताम्र उपकरण, सौजन्य डीपी अग्रवाल, 1982। मत्स्य भाले अथवा मत्स्य शल्क। मत्स्य भालों हरपून्स की धार का आकार बाढ़ फलक की भांति प्रायः त्रिभुजाकार होता है। मत्स्य भालों को 2 उप प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम प्रकार का ऊपरी भाग लंबा, नुकीला तथा ऋण युक्त है। धार वाले सिरे के ऊपर के कुछ भाग को छोड़कर नीचे 4 या 5 जोड़ी तिर्यक कांटों को बनाया गया है। प्रथम प्रकार को तांबे की चद्दर से काटकर तथा हथौड़े से पीटकर बनाया गया है। द्वितीय उप प्रकार का ऊपरी भाग तीर की तरह नुकीला है, जिसके निचले सिरों पर नुकीले नोक निकले हुए हैं। धार के नीचे दोनों ओर समान अंतर पर प्रायः 2-3 परंतु कभी कभी 3 अथवा 4 जोड़ी मुड़े हुए नुकीले कांटे बने हुए मिलते हैं। इन कांटों के नीचे तथा मूठ के ऊपर दोनों ओर हल्का सा उभार मिलता है। इनमें बने हुए एक ओर के उभार में एक छेद मिलता है। द्वितीय प्रकार के मत्स्य भाले की जटिल ढलाई बंद साचे से ही संभव है। पृष्ठ संख्या 488। कांटेदार भाला अथवा तलवार। इस प्रकार के उपकरणों की औसत लंबाई 30 से 70 सेमी तक लंबी है। लंबाई 30 से 70 सेमी तक मिलती है। कांटेदार भालों हुक्ड स्पीयर हेड्स की धार का आकार लगभग समानांतर पार्श्व वाला है। धार तथा रीढ़ की बनावट काफी मजबूत होती है। धार के नीचे लगभग 10 सेमी लंबा मूठ मिलता है, जिसके निचले हिस्से में बाहर की ओर निकली हुई एक नोक अथवा कांटा मिलता है। यह नोक उपकरण के साथ ढाल कर नहीं बनाई गई, बल्कि मूठ को छेनी से काटकर नोक को बनाया गया है था। श्रृंगिका तलवार। श्रृंगिका तलवारों की मूठ में 2 श्रृंगिकाएं बनी हुई मिलती हैं, इसलिए इनका यह नाम रखा गया है। श्रृंगिका तलवारों की धार से लेकर मूठ तक की लंबाई लगभग 45 से 50 सेमी मिलती है। मूठ की प्रत्येक श्रृंगिका की लंबाई लगभग 10 सेमी है। ये तलवारें चित्रचार, कल्लूर, रायचूर, कर्नाटक। श्रृंगिका तलवारें सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पृष्ठ संख्या 489। अपेक्षाकृत भारी स्पष्ट रीढ़ वाली तथा ढली हुई श्रृंगिका कार मूठ वाली है। अधिक वजनी न होने के कारण इनका प्रयोग हाथ से पकड़कर किया जाता रहा होगा। धर्मपाल अग्रवाल ने असुविधाजनक द्विशाखीय मूठ के कारण इनके लड़ाई में प्रयोग किए जाने के विषय में शंका प्रकट की है। अग्रवाल का अनुमान है कि इनका प्रयोग जानवरों के शिकार के लिए किया जाता रहा होगा। मानवाकृत आकृति। मानवाकृत आकृति एंथ्रोपोमोर्फिक फिगर्स से इन उपकरणों के सादृश्य के कारण इस नाम से इन्हें अभिहित किया जाता है। इनकी लंबाई लगभग 20 से 45 सेमी और चौड़ाई 30 से 43 सेमी के बीच मिलती है। इस वर्ग के उपकरणों के हाथ अंदर की ओर और पांव बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। एक साथ ताम्र चद्दर से काटकर तथा हथौड़े से पीटकर ये बनाए गए हैं। सिर की ओर का भाग अपेक्षाकृत मोटा तथा बाहें पतली है। बाहों के पृष्ठ भाग रियर में तेज धार मिलती है, जबकि पांव के अंदर का भाग इनर साइड कुंठित या थोथड़ा ब्लंट मिलता है। इन उपकरणों का क्या प्रयोजन था, यह स्पष्ट नहीं है। मानवाकृति की तरह का होने के कारण यह अनुमान किया गया है कि किसी धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित रहे होंगे। धर्मपाल अग्रवाल का अनुमान है कि चिड़ियों के शिकार के लिए इन्हें फेंक कर प्रयोग किया जाता था। चित्र 5 बहदराबाद। ताम्र निधियों के प्रमुख उपकरण सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पृष्ठ संख्या 490। ऑस्ट्रियाई विद्वान हाइन गेल्डर्न की यह मान्यता है कि ताम्र निधियों के इन उपकरणों का प्रसार केवल उत्तरी भारत में ऊपरी गंगा घाटी की ताम्र निधियों के इन उपकरणों का प्रसार ऑस्ट्रियाई विद्वान हाइन गेल्डर्न की मान्यता है कि ताम्र निधियों के इन उपकरणों का प्रसार केवल उत्तरी भारत में ऊपरी गंगा घाटी तक ही सीमित नहीं था, अपितु पाकिस्तान के पंजाब, बलूचिस्तान तथा सीमा प्रांत के क्षेत्रों तक था। इनके अलावा ईरान के लूरिस्तान और हिसार आदि से प्राप्त उपकरणों को भी गेल्डर ने ताम्र निधियों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। रेखा चित्र 6, फोर्ट मुनरो, डेरा गाजी खान, पाकिस्तान, तलवार एवं सलोजन की टेकदार कुल्हाड़ी। पाकिस्तान के सलोजन से प्राप्त बहुचर्चित टेकदार कुल्हाड़ी ट्रूनियन सेल्ट ऑफ सलोजन डेरा गाजी खान के पश्चिम की ओर पहाड़ियों की तलहटी में स्थित मुनरो के किले से प्राप्त पंखे की आकार की मूठ वाली तलवार तथा पश्चिमी एशिया के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त वसूलों आदि को भी गिल्डर ने ताम्र निधियों की कोटी में रखा है। ब्रिजवासी लाल ने निम्नलिखित 3 प्रमुख तर्कों के आधार पर गिल्डर के इस मत का अत्यंत तर्कसंगत ढंग से खंडन किया है। 1, ताम्र निधियों के उपकरण विशुद्ध तांबे के बने हुए हैं, जबकि गिल्डर द्वारा प्रस्तावित उपकरण कांस्य धातु के हैं। 2, टेकदार कुल्हाड़ी फोर्ट मुनरो तलवार और बेंत लगाने के लिए छेदयुक्त बसुले आदि दोआब क्षेत्र के पुरास्थलों से कभी नहीं प्राप्त हुए हैं। 3, मत्स्य भाले श्रृंगिका तलवारें तथा मानव कृतियां ऊपरी गंगा घाटी के बाहर स्थित क्षेत्रों से अभी तक प्रायः नहीं मिली है। पृष्ठ संख्या 491 संबद्ध पुरानिधियां। 20वीं शताब्दी के 50 के दशक के पहले ताम्रनिधियों से संबद्ध पुरानिधियों के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। बीबी लाल के प्रयासों के फलस्वरूप अब इस स्थिति में किंचित बदलाव आ गया है। लाल ने यह जानने के लिए कि इन ताम्रनिधियों के साथ और क्या क्या सामग्री संबद्ध रही होगी, राजपुर, परशु तथा बिशौली का उत्खनन कराया। इन पुरास्थलों के उत्खनन से गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए। गेरुए रंग के ये बर्तन हाथ लगाने मात्र से चूर चूर होने लगते थे। ये दोनों एकाकी संस्कृति वाले पुरास्थल सिंगल कल्चर साइट्स हैं, अतः इन पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कालानुक्रम की दृष्टि से इन्हें कहां पर रखा जाए यह कहना कठिन है, लेकिन ताम्र निधि और गैरिक मृदभांडों की समकालिकता तथा दोनों के परस्पर संबद्ध होने की संभावना स्वीकार की जा सकती है। राजपुर, परसु और बिसौली के अतिरिक्त लाल किला, अतरंजी खेड़ा, बहदराबाद, बड़ा गांव, आबखेड़ी, बहरिया, सेफई, नसीरपुर, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र तथा श्रृंगवेरपुर आदि पुरास्थलों के उत्खनन से गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए हो चुके हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में नोह, जोधपुरा और पंजाब के कतपलाव से भी गैरिक मृदभांड मिले हैं। अधिकांश पुराविद यह मानते हैं कि ताम्रनिधियों और गैरिक मृदभांडों के निर्माता एक ही संस्कृति से संबंधित थे। सहारनपुर जिले में स्थित आवखेड़ी, बड़ा गांव और बुलंदशहर में स्थित लाल किला नामक स्थलों से कतिपय मृदमूर्तियां एवं मृत पिंड प्राप्त हुए हैं। सेफई तथा लाल किला के उत्खननों से पालतू पशुओं की हड्डियां मिली हैं। अतरंजी खेड़ा से धान, जौ तथा दालों के कार्बनीकृत दाने मिले हैं। भवनों की दीवालों का निर्माण संभवतः बांस बल्लियों से किया जाता था और छाजन घास फूस का होता था। कालानुक्रम ताम्रनिधियों के तिथि क्रम के संबंध में अभी तक पर्याप्त मतभेद है। ऊपरी गंगा घाटी में स्थित हस्तिनापुर, अहिच्छत्र तथा अतरंजी खेड़ा आदि पुरास्थलों के उत्खननों से यह ज्ञात हुआ है कि गैरिक मृदभांडों की संस्कृति का प्रचलन इस क्षेत्र में कृष्ण लोहित एवं चित्रित धूसर पात्र परंपराओं के पूर्व था। हस्तिनापुर इस क्षेत्र में कृष्ण लोहित एवं चित्रित धूसर पात्र परंपराओं के पूर्व था। हस्तिनापुर में दोनों सांस्कृतिक कालों के बीच समय का व्यवधान दृष्टिगोचर होता है। लाल ने चित्रित धूसर पात्र परंपरा के आरंभ की तिथि 1100 ईसा पूर्व निर्धारित की है, अतः गैरिक संस्कृति को लाल ने इससे प्राचीनतर तिथि प्रदान करते हुए 1200 ईसा पूर्व से पहले रखा है। ताम्रनिधियों के तिथि क्रम पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जा सकता है। 1, राजपुर, परसु, बिसौली, बहदराबाद, नसीरपुर, बहरिया आदि से ताम्रनिधियाँ प्राप्त हुई हैं तथा कालांतर में इन पुरास्थलों के उत्खनन से गैरिक पृष्ठ संख्या 492 मृदभांड भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित सेफई नामक पुरास्थल के उत्खनन से एक मत्स्य भाला ऊपरी सतह से लगभग 45 सेमी नीचे के स्तर से गैरिक भांडों के साथ साथ मिले हैं। दो, ये उपर्युक्त सभी एकाकी संस्कृति वाले पुरास्थल हैं, जिनके अपेक्षाकृत अल्प जमाव वाले स्तरों से ताम्रनिधियों के तिथि क्रम के संबंध में कोई विशेष साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। अभी तक गैरिक भांडीय संस्कृति वाले पुरास्थल हैं अभी तक गैरिक भांडीय संस्कृति से संबंधित रेडियो कार्बन तिथियां C14 उपलब्ध नहीं है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की पुरातत्व प्रयोगशाला के हक्स टेबल ने उत्तर प्रदेश में स्थित गैरिक मृदभांडों के निम्नलिखित पुरास्थलों की उष्मा दीप्ति तिथियां निर्धारित की हैं। एक, अतरंजी खेड़ा, दो, झिंझिना, तीन, नसीरपुर और चार, लाल किला। जयपुर के जोधपुर नामक पुरास्थल के गैरिक मृदभांडों के धरातल से संबंधित नमूनों की दो तिथियां ज्ञात हुई हैं। पहली तिथि 2600 ईसा पूर्व है और दूसरी 2200 ईसा पूर्व। इन तिथियों ने ताम्रनिधियों तथा उनसे संबद्ध गैरिक भांडीय संस्कृति की तिथि क्रम की समस्या को और अधिक उलझा दिया है। अब कुछ पुराविदों ने कहना प्रारंभ कर दिया है। जोधपुर से जो गैरिक मृदभांड मिले हैं उनका ताम्रनिधियों के धरातल से मिलने वाले गैरिक मृदभांडों से कोई संबंध नहीं है। वे उसे एक अलग संस्कृति, जोधपुरा संस्कृति मानते हैं। यदि भविष्य में गैरिक भांडों से संबंधित पुरास्थलों से जोधपुरा जैसी तिथियां मिले तो यह मानना पड़ेगा कि जिस संस्कृति को कल तक उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति माना जाता था वह वास्तव में प्राक हड़प्पा संस्कृति थी। ताम्रनिधियों के निर्माताओं के विषय में पुराविदों में आपस में कुछ कम मतभेद नहीं है। अधिकांश पुरातत्वविद यह मानते हैं कि ताम्रनिधियों तथा गैरिक मृदभांडों के निर्माता एक ही संस्कृति के थे। ऑस्ट्रियाई विद्वान हाई गेल्डन ताम्रनिधियों को भारत में आर्य भाषा भाषी लोगों के आगमन से संबंधित मानते हैं। स्टुअर्ट पिगट ने भी आरंभ में गेल्डन के मत का समर्थन करते हुए ताम्रनिधियों को भारत में आर्यों के संचरण के पुरातात्विक संकेत माना था। कालांतर में पिगट ने अपने मत में संशोधन करते हुए ताम्रनिधियों को सिंधु सभ्यता के विस्थापितों की कृतियाँ बतलाया। हाइन गेल्डन ने सार्डिनिया, यूनान, ट्रांसकाकेशिया और मिस्र तक फैले हुए तांबे तथा कांस्य धातु के आयुधों के आकार प्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि एक, टेकदार कुल्हाड़ी लगभग 1200 से 1100 ईसा पूर्व के लगभग ट्रांसकाकेशिया से ईरान होते हुए आई। दो, फोर्ट मुनरो तलवार लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व में पश्चिमी ईरान से आई। तीन, श्रृंगिका तलवार 1200 से 1000 ईसा पूर्व के कोम्बा के इसी प्रकार के नमूनों की नकल पर आधारित है। कुल्हाड़ी नुमा बसुलों का 1200 से 1000 ईसा पूर्व में डेन्यूब क्षेत्र से ईरान होते हुए आगमन हुआ। पृष्ठ संख्या 493। गेल्डर्न ने यह प्रस्तावित किया कि आर्य भाषा भाषी लोगों के द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के संचरण से ताम्रनिधियां संबंधित है। ट्रांसकाकेशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के क्षेत्रों में ताम्रनिधियों के उपकरणों के समरूप धातु उपकरण मिले हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि आर्य इन्हीं क्षेत्रों से होते हुए भारत आए थे, इसलिए देश तथा काल दोनों दृष्टियों से आर्यों के साथ इनका संबंध जोड़ा जा सकता है। अपने मत की पुष्टि के लिए गेल्दन ने चान्हु दड़ो गदा शीर्षो की तुलना हिसार से तृतीय काल से प्राप्त नमूनों से तथा श्रृंगिका तलवार की तुलना मध्य एशिया के कोबा नामक पुरास्थल से प्राप्त तलवार से की है। इनके अलावा लूरिस्तान तथा शियाल्क के अ तथा ब काल से प्राप्त धातु उपकरणों की ओर भी विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। ब्रजवासी लाल ने गेल्दन के मत का खंडन करते हुए इस मत की अनेक विसंगतियों की ओर पुराविदों का ध्यान आकृष्ट किया है। गेल्दन द्वारा प्रस्तावित उपकरण कांस्य धातु के हैं, जबकि ताम्रनिधियों के उपकरण विशुद्ध तांबे के बने हुए हैं। लाल के अनुसार कोंबा संस्कृति की सपक्ष तलवार और ताम्रनिधियों की श्रृंगिका तलवार में तकनीकी विषमता है। कोंबा की सपक्ष तलवार की मूठ उस तलवार की धार को ढालने के पश्चात अलग से जोड़ी गई, जबकि श्रृंगिका तलवार की मूठ तथा धार एकल वन पीस रूप में ढाली गई है। इसके अतिरिक्त मत्स्य शल्क श्रृंगिका तलवारें तथा मानवाकृतियां और इसी समय तरह के अन्य उपकरण ऊपरी गंगा घाटी के बाहर नहीं मिलते हैं। अतएव यह स्वीकार करने में कठिनाई प्रतीत होती है कि इन ताम्रनिधियों के निर्माता आर्य भाषा भाषी रहे होंगे। ताम्रनिधियों का संबंध सिंधु सभ्यता के विस्थापित लोगों से जोड़ने पर भी बीबी लाल ने आपत्ति प्रकट की है। इस आपत्ति का आधार यह है कि ताम्रनिधियों के धरातल स्तरों से सिंधु सभ्यता के समरूप मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते हैं। इनके साथ ही साथ कोई ऐसी अन्य वस्तुएं भी नहीं मिली हैं जिनके आधार पर ताम्रनिधियों का संबंध सिंधु सभ्यता से जोड़ा जा सके। लाल का कहना है कि सिंधु सभ्यता के जिन लोगों ने एक विकसित नगर सभ्यता का सूत्रपात किया था, वे ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए कि उनकी संस्कृति के सामान्य तत्व भी ताम्रनिधियों के स्तरों से नहीं उपलब्ध होते हैं। तकनीकी और आकार प्रकार की दृष्टि से भी ताम्रनिधियों के विशिष्ट उपकरणों तथा सिंधु सभ्यता के धातु उपकरणों में समानता नहीं मिलती है। बीबी लाल ने यह मत प्रतिपादित किया है कि ताम्रनिधियों को दोआब में निवास करने वाले आदिम काबिलों की कृतियां माना जा सकता है। लाल के अनुसार आर्य भाषा भाषी लोगों के गांगेय क्षेत्र में आगमन के पूर्व यहाँ पर सबरो तथा निषादों आदि के पूर्वज निवास कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र से लेकर पृष्ठ संख्या 494 पूर्व दिशा में बिहार तक प्रोटो ऑस्ट्रेलायट प्रजातियों का किसी समय अस्तित्व था। इस बात के संकेत इन क्षेत्रों की बोलियों कतिपय प्रजातियों की शारीरिक बनावट में पूरा नृवंशी साक्ष्यों के रूप में आज भी मिलते हैं। आर्यों के ऊपरी गंगा घाटी में आगमन के फलस्वरूप इन आदिम कबीलों का अपना मूल नाम स्थान छोड़कर दक्षिण पूर्व की ओर संचरण के लिए विवश होना पड़ा था। स्वराज्य प्रकाश गुप्त भी लाल के मत से सिद्धांततः सहमति प्रकट करते हैं, किंतु उनका विचार है कि बिहार के पठारी क्षेत्र से प्राप्त ताम्रनिधियों तकनीकी दृष्टि से साधारण कोटि की है, इसलिए उन्हें गंगा के दोआब से प्राप्त ताम्रनिधियों से प्राचीनतर माना जा सकता है। बिहार की ताम्र अयस्क खाने माइंस तथा वनाच्छादित दक्षिण के पठारी भाग ताम्र अयस्क के खनन ही नहीं प्रत्युत धातु कर्म की स्वतंत्र उत्पत्ति के लिए भी बहुत अनुकूल थे। डीपी अग्रवाल ने दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र को ताम्र निधियों के प्रेरणा स्रोत के रूप में उल्लिखित किया है। इस संभावना की पुष्टि के लिए फिलहाल यथेष्ट पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव है। कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि ताम्र निधियों के निर्माता उत्तरकालीन हड़प्पा पर्वती हड़प्पा संस्कृति के लोग थे। इनमें यज्ञदत्त शर्मा, कृष्णदेव तथा विद्याधर मिश्र प्रभृति विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन पुराविदों के प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं: एक, गैरिक मृदभांडों के पात्र प्रकारों की समता पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा समीपवर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय हड़प्पा लेट हड़प्पन संस्कृति के पात्र प्रकारों पोटेरी सेप्स से की जा सकती है। दो, सहारनपुर जिले में स्थित आबखेड़ी में यद्यपि प्रौढ़ हड़प्पा सभ्यता के बर्तन प्रकार नहीं मिले हैं, तथापि उनकी नकल पर निर्मित बर्तन जैसे छोटी बारी वाली साधारण तस्तरिया डिश ऑन स्टैंड आदि मिली है। आबखेड़ी के पात्र प्रकारों की क्षमता मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर के पर्वती हड़प्पा काल के बर्तनों से स्थापित की जा सकती है। तीन, इनके अतिरिक्त आबखेड़ी से मिट्टी के बने हुए ककूदमान बैल खिलौना गाड़ी के चक्र तथा मृतपिंड भी प्राप्त हुए हैं। इन पुरावशेषों की हड़प्पा के सांस्कृतिक उपादानों से समता सुस्पष्ट है। चार, गैरिक मृतभांडों के विविध प्रकार के पात्र चाक निर्मित हैं। इनसे यह इंगित होता है कि इनके निर्माता संचरणशील अथवा यायावत जीवन नहीं व्यतीत करते थे बल्कि स्थायी रूप से निवास करते थे। यदि ताम्र निधियों के निर्माताओं के गांगेय क्षेत्र के मूल निवासी मान लिया जाए तब गैरिक मृतभांडों के चाक निर्मित होने का औचित्य सिद्ध करना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले पहल मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया उन्होंने चाक का प्रारंभ कैसे किया होगा। पृष्ठ संख्या 495। पाँच, ताम्रनिधियों के उपकरणों में मानवाकृतियों तथा कड़ों को छोड़कर अधिकांश नमूने सांचे में ढालकर प्रायः बनाए गए हैं। ताम्रनिधियों के निर्माता खुले ओपन मोल्ड तथा बंद या दोहरे सांचे क्लोज्ड और डबल मोल्ड की ढलाई की तकनीकों से भली भांति परिचित थे। कतिपय नमूने तो मधुच्छिष्ट पद्धति लॉस्ट वैक्स से बनाए गए प्रतीत होते हैं। श्रृंगिका तलवारों और मत्स्य शल्कों के निर्माण में एक अत्यंत समुन्नत तकनीक के दर्शन होते हैं। तापानुशीतन के तकनीक का संभवतः ताम्रनिधियों की संस्कृति में प्रचलन नहीं था। लोथल में हड़प्पा सभ्यता के स्तर से मानवाकृति का टूटा हुआ एक नमूना भी मिला है। इस प्रकार उपर्युक्त तर्कों के आलोक में यदि ताम्रनिधियों के निर्माताओं को पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मान लिया जाए तो बर्तनों के चाक पर निर्माण और औजारों के बनाने में विकसित तकनीक के उपयोग आदि से संबंधित कई समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। यह सच है कि हड़प्पा का नागर स्वरूप ताम्रनिधियों के पुरास्थलों पर अभी तक कहीं भी नहीं मिला है। विचारणीय बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता आरंभ से अंत तक नागर सभ्यता नहीं थी। द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के लगभग हड़प्पा का नागर स्वरूप समाप्त होने लगा था और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप लगभग एक ग्रामीण संस्कृति का सा हो गया था। इन उपर्युक्त मतों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रनिधियों का संबंध भारत के आद्य इतिहास की एक स्वतंत्र तथा अनोखी संस्कृति से है। ताम्रनिधियों का अन्य संस्कृतियों से धातु उपकरणों और पुरावशेषों के आधार पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन संस्कृतियों के उपादानों के साथ ताम्रनिधियों के पुरावशेषों का कोई विशिष्ट संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है। उपकरणों के आकार प्रकार और बाह्य रूप के आधार पर किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालना युक्त एवं तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। यह भी असंभव नहीं है कि ताम्रनिधियां तथा गैरिक मृतभांड किसी एक विशिष्ट संस्कृति के उपादान न होकर दो भिन्न संस्कृतियों के द्योतक हो जिनका कालांतर में परस्पर संपर्क हुआ हो। गैरिक अथवा कपीश मृतभांड। सन 1949 में बीबी लाल ने ताम्रनिधियों की समस्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित बिशौली और बिजनौर जिले के रायपुर परसु नामक गांवों के पास स्थित उन पुरास्थलों पर उत्खनन कराया था जहां से इसके पहले खेतों की जुताई करते समय ताम्रनिधियों के उपकरण प्राप्त हुए थे। इन उपर्युक्त दोनों स्थानों पर लाल और ताम्र उपकरण तो नहीं प्राप्त हुए थे, लेकिन गैरिक गेरुए अथवा कपीश रंग के मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े शेड्स अवश्य मिले थे। लाल ने पृष्ठ संख्या 456 इस प्रकार के पात्र खंडों को गैरिक मृतभांड नाम उनके रंग के आधार पर प्रदान किया। इस प्रकार के मृतभांड के लिए आज गैरिक मृतभांड या OCP एक सुप्रचलित नाम है। इसके अतिरिक्त गेरु पुते हुए मृतभांड एवं गैरिक मृतभांड परंपरा आदि नाम भी कभी कभी प्रयुक्त किए जाते हैं। सन सन 1950 से 52 के मध्य हस्तिनापुर में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप इस प्रकार के पाषाणखंड सबसे निचले स्तरों से प्राप्त हुए। इस प्रकार उन्हें एक निश्चित पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुआ। एटा जिले के अतरंजी खेड़ा, बरेली जिले के अहिच्छत्र, इलाहाबाद जिले के श्रृंगवेरपुर और राजस्थान के भरतपुर जिले के नोह आदि पुरास्थलों से इस प्रकार के पाषाणखंड सबसे निचले स्तरों पर प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त सहारनपुर में स्थित बड़ा गांव, आबखेड़ी तथा बुलंदशहर जिले में स्थित लाल किला या मिटावा जिले में स्थित सेफई आदि एकाकी संस्कृति वाले पुरास्थलों के उत्खनन से भी इस प्रकार के पाषाणखंड प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के पाषाणखंडों के साथ उत्खनन में अभी तक सेफई से ही ताम्र निधियों से संबद्ध एक उपकरण प्राप्त हुआ है। सेफई में धरातल से 45 सेमी की गहराई के स्तर से गैरिक मृदभांडों के साथ एक मत्स्य भाला पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुआ है। विस्तार। गैरिक मृदभांड परंपरा का प्रस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मुख्य रूप से मिलता है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रसार सहारनपुर जिले में हरिद्वार के पास स्थित बहदरा से लेकर लगभग 300 किमी दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित नोह तक मिलता है। इसी प्रकार दक्षिण में पंजाब के जालंधर जिले के कतब लाव से लेकर पूर्व दिशा में लगभग 450 किमी की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अहिच्छत्र नामक पुरास्थल तक मिलता है। सन 1979 से 80 के उत्खनन सत्र के दौरान इलाहाबाद जिले में स्थित श्रृंगवेरपुर के टीले के सबसे निचले स्तर से गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार फिलहाल श्रृंगवेरपुर के पुरास्थल को गैरिक मृदभांडों की सबसे पूर्वी सीमा माना जा सकता है। गैरिक मृदभांडों से संबद्ध पुरास्थलों का अधिकतम घनत्व ऊपरी गांगे दोआब क्षेत्र से मिलता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अभी तक गैरिक मृदभांड से संबंधित लगभग 80 से अधिक पुरास्थल खोज निकाले गए हैं। पात्र प्रकार। हस्तिनापुर के उत्खनन की रिपोर्ट में लाल ने प्रमाणा भाव में गैरिक मृदभांड के बर्तनों के आकार प्रकार के संबंध में कोई निश्चित मत नहीं प्रकट किया था, लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी है। बहदराबाद, बड़ा गांव, लाल किला, बुलंदशहर, अतरंजी खेड़ा तथा सेफई आदि के उत्खननों से प्राप्त पाषाणखंडों के आधार पर पात्र प्रकारों के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पृष्ठ संख्या 497, रेखाचित्र 7, लाल किला, बुलंदशहर, गैरिक मृदभांड। बर्तनों की गढ़न फैब्रिक सर्वत्र एक सी नहीं है। पतले एवं मोटे दोनों ही प्रकार के बर्तन प्राप्त होते हैं। गैरिक मृदभांड के बर्तनों के विषय में आम धारणा यह है कि ये बर्तन भली भांति एवं ठीक से पके हुए नहीं हैं। अंगुलियों से रगड़ने मात्र से ही चूर चूर होने लगते हैं, लेकिन इस मत से प्रसिद्ध पुरातत्वविद हंसमुख धीरज लाल सांकलिया सहमत नहीं है। उनका मत है कि गैरिक बर्तन कोई मृदभांड परंपरा नहीं है, अपितु कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों का परिणाम है। शांकलिया का अभिमत है कि ओसीपी पुरास्थलों के लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण यह स्थित हो गए हैं। यही विशेष कारण है कि इस प्रकार के बर्तन अत्यंत नाजुक एवं भंगुर हो गए हैं। ये छूने मात्र से धूल में परिवर्तित होने लगते हैं। पृष्ठ संख्या 498, भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण विभाग के पुरातात्विक रसायनज्ञ डॉक्टर बीबी लाल सांकलिया के उपर्युक्त मत से सहमत नहीं है। उन्होंने ओसीपी के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पाषाणखंडों के सूक्ष्म परीक्षण तथा विश्लेषण के बाद यह मत प्रकट किया है। एक गैरिक मृदभांड कम पके नहीं है। इन बर्तनों का लाल रंग इस बात का परिचायक है कि ये बर्तन काफी उच्च तापक्रम में पकाए गए हैं। दो, गैरिक मृदभांडों से संबंधित पुरास्थलों के काफी लंबे समय तक पानी में डूबे रहने की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है, क्योंकि ओसीपी के साथ प्राप्त होने वाले अन्य पाषाणखंडों पर बाढ़ का प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखलाई पड़ता है। तीन, रसायनज्ञ लाल का मत है कि ओसीपी के पाषाणखंडों पर क्षरण का जो प्रभाव परिलक्षित होता है उसका प्रमुख कारण यह है कि उस प्रकार के पात्रखंड बहुत दिनों तक खुले हुए पड़े रहे तथा जाड़ा गर्मी एवं बरसात के ऋतु परिवर्तन के शिकार हुए। इन दोनों मतों के विद्वानों ने गैरिक मृद्भांड काल की ऊपरी गंगा घाटी तथा समीपवर्ती पश्चिमी क्षेत्रों के लिए दो प्रकार की जलवायु की परिकल्पना की है। प्रथम मत के अनुसार इस काल में बहुत अधिक जल वृष्टि हुई होगी, तभी तो इन क्षेत्रों के जलमग्न होने की नौबत पैदा हुई होगी। द्वितीय मत शुष्क जलवायु की परिकल्पना करता है। इनमें से किसी भी मत के स्वीकार्य होने के लिए नवीन प्रमाण जुटाने और इस प्रकार की पुरातात्विक सामग्री के सूक्ष्म ढंग से परीक्षण तथा विश्लेषण की आवश्यकता है। कृष्णदेव और आरसी गौड़ ने गैरिक मृद्भांड के बर्तन प्रकारों की जो सूचियां या तालिकाएं प्रस्तुत की हैं उनमें 18 प्रकार के बर्तनों का उल्लेख है। उनमें से मोटे गढ़न में बड़े आकार के हदे नाद, बीचों बीच में घुंडी वाले कटोरे नुमा ढक्कन, साधार तस्तरी तसले, चटाई एवं बटी हुई रस्सी की छाप से युक्त घड़े, कलश, पेंदेदार कटोरे, बड़े बड़े मटके या घड़े प्रमुख पात्र प्रकार हैं। पतली गड़न में छोटे किनारे, बारी वाली साधार तस्तरियां, चिलमची, घुड़ीदार कटोरे नुमा ढक्कन, दीप तथा छोटे आकार के कलश आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। चित्रण तथा उत्कीर्ण डिजाइन। गैरिक मृद्भांड के पात्र खंडों में चित्रकारी तथा उत्कीर्ण रेखांकन दोनों का अभाव था, लेकिन अब इस स्थिति में काफी परिवर्तन हो चुका है। अतरंजी खेड़ा और लाल किला। बुलंद शहर से प्राप्त गैरिक पात्र खंडों की लाल सतह पर काले रंग से चित्रण मिलते हैं, जैसे घड़ों पृष्ठ संख्या 499 में गले के ऊपर एक चौड़ी काली पट्टी, कभी कभी अन्य बर्तनों के ऊपरी या निचले बाहरी भाग में गहरी काली पट्टी, समानांतर पट्टियों के अंदर आड़ी जाली के चौखाने मिलते हैं। लाल किला से प्राप्त एक पात्र खंड पर बना हुआ ककुदमान वृषभ भी उल्लेखनीय है। उत्कीर्ण अलंकरण इंसाइज्ड डेकोरेशन अतरंजी खेड़ा, लाल किला, मानपुर और पंजाब के कतपला से प्राप्त गैरिक पात्र खंडों में मिले हैं। प्रमुख उत्कीर्ण अलंकरणों में अंगुली के नाखून से उत्कीर्ण अलंकरण, खांचेदार अलंकरण, लहरदार रेखाएं, पत्ती के आकार तथा अंग्रेजी अक्षर बी के आकार के अलंकरण, चौखाने, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, समानांतर रेखाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कालानुक्रम। दोआब के गांगेय क्षेत्र में कृष्ण लोहित तथा चित्तिदूषण मृद्भांड के पूर्व गैरिक मृद्भांड प्रचलित थे। अधिकांश पुरास्थल जिनका उत्खनन किया गया है वे केवल एकाकी संस्कृति वाले पुरास्थल हैं। ऐसी स्थिति में उनके आधार पर स्तरीकरण की सहायता से तिथि क्रम निर्धारण बहुत सरल काम नहीं है। हस्तिनापुर के उत्खनन से इस प्रकार के पात्रों के सबसे निचले स्तरों से प्राप्त होने के कारण उत्खाता लाल ने इनका समय 1200 ईसा पूर्व के पहले अनुमानित किया है। नोह, अतरंजी खेड़ा एवं अच्छत्र तथा श्रृंगवेरपुर की खुदाइयों से भी इस प्रकार के पात्रखंड आधारभूत सबसे निचले स्तरों से प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृद्भांडों का कालक्रम अनुमान परक ढंग से इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर 13वीं-12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया जा सकता है। उष्मादीप्ति तिथियां। अभी तक गैरिक मृद्भांडों की कोई भी रेडियोकार्बन तिथि उपलब्ध नहीं है। ऑक्सफोर्ड पुरातत्व अनुसंधान प्रयोगशाला के डॉक्टर हक्सटेबल ने उत्तर प्रदेश में स्थित गैरिक मृद्भांडों के पुरास्थलों को की निम्नलिखित उष्मादीप्ति तिथियां निर्धारित की हैं। अतरंजी खेड़ा 1690 ईसा पूर्व, झिंझना 2079 ईसा पूर्व, नसीरपुर 1690 प्लस माइनस 10% ईसा पूर्व, झिंझना 2079 प्लस माइनस 10% ईसा पूर्व, नसीरपुर 1340 ईसा पूर्व प्लस माइनस 10%, लाल किला 1800 ईसा पूर्व प्लस माइनस 10%। ये उष्मादीप्ति तिथियां अतरंजी खेड़ा को छोड़कर शेष उन पुरास्थलों के गैरिक मृद्भांडों पर आधारित है जो मात्र एक पुरातात्विक संस्कृति वाले हैं। इसके अलावा एक ही स्थल के विभिन्न स्तरों के पात्रखंडों की उष्मादीप्ति तिथियों के पृष्ठ संख्या 500, सुसंगत तथा क्रमबद्ध होने पर ही इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है। गैरिक मृदभांडों के निर्माताओं एवं प्रयोक्ताओं के विषय में बहुत अधिक मतभेद है। जो विद्वान गैरिक मृदभांडों का संबंध ताम्र निधियों से जोड़ते हैं, वे उन्हें गंगा घाटी के मूल निवासियों की कृति मानते हैं। अन्य विद्वान इस मृदभांडों का संबंध पर्वती हड़प्पा या सैंधव संस्कृति के लोगों से बतलाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ये मृदभांड किसी एक खास संस्कृति के उपादान न होकर गैरिक एवं लाल मृदभांड प्रयोग करने वाली अनेक संस्कृतियों के द्योतक हैं। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता वीवी लाल ने सांकलिया ताम्र निधियों और गैरिक मृदभांड की समकालिकता की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था। इस समस्या पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों के ध्यान में रखना आवश्यक है। एक, राजपुर परशु बिसौली बहदराबाद नसीरपुर तथा बहरिया से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं तथा कालांतर में इन पुरास्थलों के उत्खनन से मात्र गैरिक मृदभांड मिले हैं। दो, ये सभी उपर्युक्त पुरास्थल केवल एक पुरातात्विक संस्कृति वाले हैं जिनके अपेक्षाकृत अल्प जमाओं डिपॉजिट के उत्खनन से केवल गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये दोनों बातें गैरिक मृदभांडों और ताम्र निधियों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर एक ही लोगों के सांस्कृतिक उपादान स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हैं। हाल ही में सेफई के उत्खनन से एक ही स्तरों से गैरिक मृदभांडों के साथ एक मत्स्य भाले की भांति की प्राप्ति इसकी पुष्टि करती है। लाल के अनुसार गांगेय क्षेत्र में आर्य भाषा भाषी लोगों के आगमन के पूर्व यहाँ पर शबरों तथा निषाद आदि के पूर्वज निवास कर रहे थे। इन्हीं शबरों तथा निषादों को गैरिक मृदभांडों और ताम्र निधियों के निर्माण का श्रेय दिया जा सकता है। स्वराज्य प्रकाश गुप्त भी मूलवासी आदिवासी मत का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत यज्ञदत्त शर्मा कृष्णदेव तथा विद्याधर मिश्र प्रभृति विद्वानों का मत है कि गैरिक मृदभांडों एवं ताम्र निधियों को परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं की कृतियां माना जा सकता है। इस संबंध में प्रमुख तर्क इस प्रकार है। एक, गैरिक मृदभांडों के पात्र प्रकारों की क्षमता पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा समीपवर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय हड़प्पा काल के पात्र प्रकारों से स्थापित की जा सकती है। दो, सहारनपुर जिले में स्थित आबखेड़ी में यद्यपि प्रौढ़ हड़प्पा बर्तन प्रकार नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन उनसे अद्भुत पात्र प्रकार जैसे छोटी बारी पृष्ठ संख्या 501 वाली साधार तस्तरियां आदि मिलती हैं। आबखेड़ी के पात्र प्रकारों की क्षमता मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर के पर्वतीय हड़प्पा काल के बर्तनों से स्थापित की जा सकती है। तीन, इनके अतिरिक्त आबखेड़ी से मिट्टी के बने हुए ककूतमान बैल खिलौना गाड़ी के चक्र तथा मृतपिंड भी प्राप्त हुए हैं। इन वस्तुओं की हड़प्पा के सांस्कृतिक उपादानों से समता सुस्पष्ट है। चार, गैरिक मृदभांडों के विविध प्रकार के पात्र प्रकारों से यही संकेत मिलता है कि इनके निर्माता तथा प्रयोक्ता संचरणशील अथवा यावर जीवन नहीं व्यतीत करते थे बल्कि स्थायी रूप से निवास करते थे। ये उपर्युक्त तर्क गैरिक मृदभांडों से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए अत्यंत विद्वत्तापूर्ण तथा तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करते हैं। उपलब्ध पुरातात्विक प्रमाण इस समस्या के पूर्ण निदान के लिए अपर्याप्त हैं। आशा है कि भविष्य में इस समस्या पर अधिक प्रकाश पड़ सकेगा। संबद्ध पुरानिधियां गैरिक मृदभांडों के साथ संबद्ध पुरानिधियों की संख्या बहुत कम है। ताम्रनिधियों के उपकरण समूह में से अधिकांश परिस्थिति जन्य प्रमाणों के आधार पर ही गैरिक मृदभांडों से संबद्ध माने जाते हैं। इटावा में सेफई के उत्खनन से गैरिक मृदभांडों के साथ एक मत्स्य भाला अवश्य प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अतरंजी खेड़ा में गैरिक मृदभांडों के स्तरों के एक टुकड़े पर कुछ ताम्र कण चिपके हुए मिले हैं। अनुमान किया जाता है कि यह पात्रखंड मूसा अथवा सांचे का टुकड़ा है। बड़ा गांव के उत्खनन से तांबे का एक उसी प्रकार का छल्ला प्राप्त हुआ है जिस प्रकार के पोंडी और बहदराबाद से प्राप्त ताम्र निधियों से मिले हैं। मृण मूर्तियां सहारनपुर जिले में स्थित आबखेड़ी से मिट्टी की बनी हुई कई वस्तुएं मिली हैं, जैसे डीलदार ककूदमान बैल की मृण मूर्ति, खिलौना गाड़ी का केंद्रीय नाभि वाला पहिया तथा मृतपिंड आदि। इसी प्रकार बड़ागांव से गोल मृतपिंड खिलौना गाड़ी का पहिया प्रस्तर के बाद तथा कांचली मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। मानव मिनमूर्तियाँ बहुत कम मिली हैं। लाल किला से प्राप्त रात्रि देवी की मिनमूर्ति इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। यह सुविदित ही है कि पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता के कतिपय पुरास्थलों से बहुसंख्यक मिनमूर्तियाँ मिली हैं। कृषि तथा पशुपालन अतरंजी खेड़ा के गैरिक मृदभांड वाले स्तरों से धान जौ तथा दालों के कार्बनीकृत दाने प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार ऊपरी गंगा घाटी में यह साक्ष्य कृषि कार्य का प्राचीनतम प्रमाण है। इनके अतिरिक्त सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं जो अनाज के दानों को पीसने के सूचक हैं। बड़े बड़े मटके और घड़े भी संभवतः अनाज भंडारण के लिए उपयोग में आते रहे होंगे। पृष्ठ संख्या 502 सेफई तथा लाल किला के उत्खननों से पशुओं की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सेफई से प्राप्त हड्डियों में से बैल की पसलियां उल्लेखनीय हैं। लाल किला से प्राप्त पशुओं की हड्डियों में से अधिकांश या तो अधजली है अथवा उनमें हलाल करने के निशान हैं। लाल किला से प्राप्त एक पात्र खंड पर ककुदमान बिशप का चित्र भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। पशुओं में संभवतः गाय बैल पालतू पशुओं के रूप में अस्तित्व में आ चुके हैं। मकान गैरिक मृदभांड के किसी भी पुरास्थल से मकान की रूपरेखा नहीं मिली है। लाल किला से मिट्टी के कुछ लोदों पर नरकुल की छाप मिली है जिससे यह संकेत मिलता है कि मकानों का निर्माण बांसबल्ली एवं घास फूस की सहायता से किया जाता था। लाल किला से एक मकान की फर्श का साक्ष्य मिला है। यह फर्श मिट्टी का प्लास्टर करके चिकना किया गया था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गैरिक मृदभांड परंपरा ऊपरी गंगा घाटी में ग्राम्य जीवन का सबसे पहला उदाहरण प्रस्तुत करती है, किंतु अधिकांश पुरास्थल एकाकी संस्कृति वाले हैं। पुरास्थलों पर सांस्कृतिक जमाव का स्तर बहुत मोटा नहीं मिलता है। पुरास्थल भी एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित है। इससे यह इंगित होता है कि उस समय मानव की आबादी अत्यंत विरल थी। लंबे समय तक एक ही स्थान पर इस संस्कृति के लोग लगातार नहीं निवास करते थे बल्कि अपनी बस्तियां बदलते रहते थे। गैरिक मृदभांड परंपरा के विभिन्न पक्षों के विषय में पुरातात्विक जानकारी नितांत अपेक्षित है। आशा की जाती है कि पुराविद इसके विभिन्न पक्षों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए निकट भविष्य में अपेक्षित पुरातात्विक साक्ष्य जुटाने में सफल हो सकेंगे।